दिन भर 18 जनवरी शुक्रवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। अमरीकी विदेश मंत्री से आज मिलेंगे उत्तर कोरियाई नेता किम के दूत। ट्रंप से भी हो सकती है मुलाकात। भारत ने 7 विकेट से जीता ऑस्ट्रेलिया से आखिरी वनडे सीरीज पर 2-1 से कब्जा।
अगर आप 3 सीरीज में से 2 जीतते हैं तो आप कह सकते हैं कि बहुत ही सफल दौरा रहा है ऑस्ट्रेलिया का।
और विवेचना में रेहान फजल से सुनिए के आसिफ और मुगले आजम की कहानी।
बड़े गुलाम अली कासम नौशाद साहब को बाहर ले गए कमरे के और कहा कि भैया आप ये किस सन के आदमी को ले आए हैं, मैं मना कर रहा हूँ, नहीं गाऊंगा, ये क्या मुझसे जबरदस्ती गवाएंगे और मैं इनसे इतनी बड़ी फीस मांगूंगा कि ये भाग खड़े होंगे। इन्होंने आसिफ साहब से कहा कि अच्छा आप मुझे पैसे देंगे, 25,000 रुपए लूंगा, बताइए।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सिंधु आसनी से। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के बीच होने वाली दूसरी संभावित बैठक के विषय में चर्चा के लिए एक शीर्ष उत्तर कोरियाई वार्ताकार वाशिंगटन पहुंचे हैं। किम योंग चोल अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के साथ मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे। बीते साल जून में सिंगापुर में दोनों नेताओं के बीच हुई पहली मुलाकात से पहले भी किम योंग चोल अमरीका आए थे। वियतनाम का कहना है कि वो वार्ता की मेजबानी करने के लिए तैयार है। ये वार्ता अगले महीने हो सकती है। सिंगापुर में हुई ऐतिहासिक मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक रिश्ते ठंडे पड़ गए हैं, क्योंकि उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करने की दिशा में प्रगति नहीं दिखी है। अफ्रीकन यूनियन का कहना है कि उसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनावों के नतीजों पर गहरा शक है। कॉन्गो में शुक्रवार को अंतिम नतीजे जारी किए जाने हैं। अफ्रीकी यूनियन के नेताओं ने इन नतीजों को टालने की मांग की है। हालांकि सरकार ने इस मांग को नकार दिया है। देश में जारी संकट के समाधान के लिए अफ्रीकी यूनियन ने एक प्रतिनिधिमंडल को किनशासा भेजने का फैसला लिया है। अंतरिम नतीजों में विपक्षी उम्मीदवार फेलिक्स शिशकेडी को विजेता घोषित किया गया है, लेकिन दूसरे नंबर पर आए उम्मीदवार मार्टिन फायुलू ने उन पर निवर्तमान राष्ट्रपति जोसेफ कबीला के साथ सौदा करने के आरोप लगाए हैं। कांगो की संवैधानिक अदालत जल्दी ही मार्टिन फायुलू की ओर से दायर किए गए वाद पर फैसला करेगी। अफ्रीकी यूनियन के दखल को दरकिनार करते हुए फेलिक्स शिशकेडी के प्रवक्ता पीटर काजाडी ने कहा,
Plutôt que d'attendre l'arrêt de la cour, c'est maintenant la.
अदालत के फैसले का इंतजार करने के बजाय अब अफ्रीकी यूनियन कह रही है कि अदालत फैसला ही न दे, हमें यह सब फर्जीवाड़ा लग रहा है। अंतर्राष्ट्रीय या घरेलू नजरिए से भी इस दखल का कोई आधार नहीं है। म्यांमार सेना का कहना है कि वो देश के पश्चिमी प्रांत अराकान में सक्रिय बौद्ध विद्रोही गुट अराकान आर्मी को हरा देगी। बीते महीने में विद्रोहियों और सरकारी बलों के बीच जारी झड़पों की वजह से कम 5,000 लोगों को पलायन करना पड़ा है। सेना के प्रवक्ता जनरल टुन टुन नी ने बताया कि देश की नेता सूची ने सेना से इस बौद्ध विद्रोही समूह पर सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है। उन्होंने बताया, राष्ट्र के सलाहकार ने अराकान आर्मी के खिलाफ हमलावर होने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर अराकान आर्मी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सरकार पर आरोप लगाएगा कि अराकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी पर इसलिए कार्रवाई की गई थी क्योंकि उनका धर्म अलग था, इसलिए हमने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका की इलेक्ट्रिक कारें बनाने वाली कंपनी टेस्ला अपने कर्मचारियों की संख्या में 7% की कटौती करने जा रही है। टेस्ला का कहना है कि उसके वाहन आम लोगों के लिए काफ़ी महंगे हैं और उन्हें सस्ता करने के लिए कंपनी को ये कदम उठाना होगा। टेस्ला ने कहा कि बीते साल कर्मचारियों की संख्या में की गई 30% बढ़ोतरी के खर्चे को अब वो उठाने की स्थिति में नहीं है। टेस्ला अपनी सस्ती कार को यूरोप और एशिया के बाजारों में उपलब्ध कराना चाहती है। बीबीसी समाचार।
दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं वात्सल्य राय। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ बीबीसी के मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं लाइव। भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा जीत के साथ इसका समापन किया है। भारत ने मेलबर्न में खेले गए आखिरी वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से मात दी। भारत ने यह सीरीज 2-1 से अपने नाम की। इसके पहले भारत ने टेस्ट सीरीज भी 2-1 से जीती थी। मैच के बारे में हम आगे बात करेंगे। शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के बीच अगले महीने एक और मुलाकात हो सकती है। इस मुलाकात का रास्ता तैयार करने के लिए किम के दूत किम योंग चोल वॉशिंगटन में है। वो आज अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से मिलेंगे। उनकी ट्रंप से भी मुलाकात हो सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं मानसी दास।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के बीच बीते साल जून में ऐतिहासिक मुलाकात हुई। तब सिंगापुर में हुई मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच ऐसी गर्मजोशी दिखी कि अतीत में दोनों के बीच रही तमाम कड़वाहट हवा होती नजर आई। एक बार फिर दोनों नेताओं को बातचीत की मेज पर लाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए किम जोंग उन के करीबी माने जाने वाले किम योंग चोल वॉशिंगटन में हैं। वो अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से मुलाकात करेंगे और फिर राष्ट्रपति ट्रंप से भी मिल सकते हैं। इस महीने की शुरुआत में ट्रंप ने भी कहा था कि अमेरिका और उत्तर कोरिया एक और मुलाकात की जगह को लेकर बातचीत कर रहे हैं। रिपोर्टों के मुताबिक वियतनाम ने कहा है कि वो दोनों नेताओं के बीच दूसरी मुलाकात की मेजबानी को तैयार है। हालांकि जून में हुई मुलाकात के दौरान दिखी गर्मजोशी बाद के दिनों में नजर नहीं आई है। सिंगापुर में ट्रंप की मौजूदगी में किम जोंग उन ने वादा किया था कि वो कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु हथियारों से मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन बार बार ये सवाल उठाया जाता है कि उत्तर कोरिया ने इस दिशा में गंभीर कदम नहीं उठाए हैं। बीते साल सितंबर में अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा था,
We continue to see illegal imports of additional refined petroleum using ship-to-ship transfers.
पोम्पियो कह रहे थे कि हम अब भी पेट्रोलियम का अवैध आयात देख रहे हैं। ये जहाजों से जहाजों को स्थानांतरित किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के तहत ये प्रतिबंधित है। हम सभी को उत्तर कोरिया में होने वाले कोयले के अवैध आयात पर रोक लगाने की जवाबदेही लेनी चाहिए। बीते साल सितंबर में ही उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री ने भी सवाल उठाने वाले देशों को सख्त लहजे में जवाब दिया था। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री री योंग हो कह रहे थे कि माना जाता है कि प्रतिबंध हमें घुटनों पर ले आएंगे। जो लोग हमें लेकर बेपरवाह रहते हैं, ऐसी सोच उन्हीं लोगों का एक सपना है। हाल में नए साल के भाषण में किम जोंग उन ने कहा था कि वो परमाणु हथियार हटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये चेतावनी भी दी थी कि अगर अमेरिका के प्रतिबंध बने रहते हैं तो वो अपना रास्ता बदल भी सकते हैं। रिपोर्टों के मुताबिक इस बीच उत्तर कोरिया की उप विदेश मंत्री चो सोन हुई स्वीडन के दौरे पर है, जहां उत्तर कोरिया के लिए अमरीका के विदेश प्रतिनिधि स्टीफन बीगन से मुलाकात कर सकती हैं। लेकिन फिलहाल तमाम निगाहें किम योंग चोल पर हैं कि वो अमरीका से क्या संदेश लाते हैं।
उत्तर कोरिया और अमरीका के बीच संबंधों में सुधार की नई कोशिश। रिपोर्ट सुना रही थी मानसी दास।
खबर सच है
अगर बीबीसी पर है।
रुख भारत का और बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो के गगनयान मिशन की। इस मिशन पर मानव भेजने के पहले इसरो रोबोट के जरिए तैयारी परखना चाहता है। इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। क्या है सवालों की वजह, ये जानने के लिए अब से कुछ वक्त पहले मैंने बात की बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव से।
जो भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, उसने ये तय किया है कि कोई 9000 करोड़ से ज़्यादा रुपए की लागत वाला जो गगनयान मिशन है, जिसके बारे में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल लाल किले से प्रॉमिस किया था कि भारत का पहला मिशन होगा अंतरिक्ष में जिसमें मानव जाएंगे, उसके बारे में बात हुई है। और भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने तय किया है कि उसके पहले की जो टेस्टिंग में 2 बार जो अंतरिक्ष की उड़ानें होंगी उसमें पहले की तरह जैसे पुराने जमाने में जब भी अंतरिक्ष में मिशन गए हैं तो जानवरों को भेजा गया था ट्रायल बेसिस पर, इसरो ने तय किया है कि वो जानवरों को नहीं भेजेगा। क्यों नहीं भेजेगा, ये सवाल किया हमने आज इसरो के चेयरमैन के शिवन से, तो उनका जवाब ये था। दरअसल इसरो प्रमुख हमसे ये कह रहे थे कि भारत एकदम सही कदम उठा रहा है और उनके मुताबिक जब अमरीका रूस जैसे देश जानवरों को स्पेस में भेज रहे थे तब आज की तरह की अत्याधुनिक तकनीक मौजूद नहीं थी और मानव रोबोट्स का इजाद नहीं हुआ था, इसलिए उनको लगता है कि आज की तारीख में सेंसर्स हैं, टेक्नोलॉजी है, इसलिए वो ज्यादा बेहतर काम करेंगे। लेकिन साथ ही वास्तव में तमाम जानकार जो हैं और तमाम वैज्ञानिक जो हैं वो इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि जब आप एक मानव मिशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिना किसी लिविंग बीइंग के, किसी जीवित व्यक्ति या किसी जानवर को जैसे जो परीक्षण के तौर पर भेजे जाते थे उनके बिना आप रोबोट से कैसे टेस्ट करेंगे। इसी सिलसिले में हमारी विज्ञान के मामलों के जानकार पल्लव बागला से बातचीत हुई।
जब लाइफ सपोर्ट सिस्टम को टेस्ट करना है तो जो सेंसर लगे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर है, हीट सेंसर है, ह्यूमिडिटी सेंसर है, क्रैश सेंसर है, एक्सेलरेशन सेंसर है, उसको सबको आप एक संग लगा के आप बोल दो कि ह्यूमनॉइड है तो वो है तो रोबोटिक सिस्टम सेंसर्स हैं। अब उसको ह्यूमनॉइड बोल दो या रोबोटिक बोल दो या सेंसर बोल दो, बात बराबर है। एंड ऑफ द डे एक बड़ा रिस्क है।
दरअसल वात्सल्य, भारत अगर ये स्पेस मिशन कामयाब हो गया 2021 के अंत में तो चौथा ऐसा देश होगा जो ऐसा करेगा। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि अभी तक सिर्फ अमरीका, रूस और चीन ने ऐसा किया है। इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, करीब 10,000 करोड़ की लागत का प्रोजेक्ट है और इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। लेकिन हमारी जो इसरो में कुछ अफसरों से भी बात हुई है ऑफ द रिकॉर्ड, तो उनका ये कहना है कि चूंकि ये सरकार का भी फैसला है तो इसरो पर भी भले डायरेक्ट नहीं लेकिन थोड़ा सा दबाव जरूर है कि इसको कामयाब बनाएं और समय पर पूरा करें।
इसरो का मिशन, जानकारी दे रहे थे नितिन श्रीवास्तव।
बीबीसी इंडिया पोल।
आम चुनाव में यूपी की 80 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले के आसार। उत्तर प्रदेश में क्या फिर चलेगा मोदी का जादू या सपा बसपा का मेल बिगाड़ेगा बीजेपी का खेल? इस गठबंधन को कितनी खलेगी कांग्रेस से दूरी? इंडिया बोल में होगी पड़ताल। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 19 जनवरी शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811 7000 या 1811027001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब वक्त है विवेचना का। हाल में यासिर अब्बासी की किताब प्रकाशित हुई है, ये उन दिनों की बात है। इस किताब में उन्होंने नामचीन फिल्मी हस्तियों के अपने साथियों पर लिखे उन लेखों को प्रकाशित किया है जो पुरानी उर्दू पत्रिकाओं में छपे थे। इनमें से एक लेख मुगल-ए-आज़म फिल्म के मशहूर निर्देशक के आसिफ पर था जो संगीतकार नौशाद ने शमा के अगस्त 1984 के अंक में लिखा था। नौशाद की कहानी, नौशाद की जुबानी। विवेचना में रेहान फजल याद कर रहे हैं के आसिफ और फिल्म मुगल-ए-आज़म से जुड़े कुछ रोचक प्रसंगों को।
अदालत दीवाने जज्बात में उबलती हुई मोहब्बत की दलीलें सुनना नहीं चाहती, अनारकली चाहती है।
और अनारकली को मैं देना नहीं चाहता।
तो फिर नस्ल तैमूर के जाहो जलाल की कसम, तुम इस अजीम शान तख्त ताज से हमेशा के लिए महरूम कर दिए जाओगे।
मुझे ये मंजूर है लेकिन वो तख्त मंजूर नहीं जिसके पाए अनारकली के जनाजे पर रखे हूँ, वो ताज जिसकी कलकी में खुद मेरा ही दिल पैवस्त हो, मुझे मंजूर नहीं।
मालूम हुआ कि तुम अपनी मोहब्बत की आग में मुगलों का ताज पिघलाकर एक रकासा के पैरों की पाजेब बनाना चाहते हो।
दिलीप कुमार और पृथ्वीराज कपूर के बीच इस क्लासिक सीन को फिल्माया था लेजेंडरी निर्देशक के आसिफ ने। उस समय 1.5 करोड़ रुपए के लागत से 10 सालों तक बनी इस फिल्म के बड़े कैनवास की कल्पना करना और उसे अमली जामा पहनाना सिर्फ करीमुद्दीन आसिफ के बूते की ही बात थी। आसिफ ने अपने जीवन में सिर्फ 2 फिल्मों का निर्देशन किया, 1944 में आई फूल और मुगल-ए-आज़म, लेकिन इसके बावजूद उनका नाम भारतीय फिल्म इतिहास में हमेशा स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ये उन दिनों की बात है कि लेखक यासिर अब्बासी बताते हैं।
मुगल-ए-आज़म में कम से कम 100 बार देख चुका हूँ लेकिन आज भी टीवी पे आती है तो मैं चैनल चेंज नहीं कर पाता हूँ। कमाल का विजन कमाल का पैशन तो खैर उनका सबको पता ही है, मुझे तो लगता है जिस तरह का काम उन्होंने किया है उसको टॉप करना बड़ा मुश्किल है, सिर्फ मुगले आजम की बारे में ही अगर बात की जाए तो।
यूं तो इस फिल्म का हर पक्ष मजबूत है, लेकिन इस फिल्म को दर्शकों के बीच लोकप्रिय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी इसके डायलॉग्स ने। यासिर अब्बासी नौशाद को ये कहते बताते हैं कि अनारकली को जिंदा चुनवाए जाने से पहले के दृश्य में अकबर उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछते हैं और वो कहती हैं कि वो एक रात के लिए भारत की मलिका बनना चाहती हैं।
जब डायलॉग सिटिंग हुई तो ये तीनों राइटर्स अमान साहब, एक्चुअली जीनत अमान के वालिद भी, तो अमानुल्ला साहब, एहसन रिजवी साहब और वजाहत मिर्जा, ये तीन लोग स्टोरी सिटिंग में थे। तो पहले एहसन रिजवी साहब और अमानुल्ला साहब ने अपने अपने वर्जन सुनाए, आसिफ साहब ने सुने और फिर वो वजाहत मिर्जा साहब की तरफ पलटे कि भाई अब आप अपना सुनाइए। तो वजाहत मिर्जा साहब एक पानदान रखते थे, उन्होंने अपना पानदान खोला और पानदान में से एक वो पर्ची निकाली और मुंह में जो पान था वो थूक के बोले कि बाकी जो लोगों ने कहा ये सब बकवास है, इतना लंबा चौड़ा भाषण करने की क्या जरूरत है, अनारकली सिर्फ एक छोटी सी चीज करेगी, सलाम करेगी और कहेगी कि ये कनीज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को अपना खून माफ करती है। और सारे लोग वाह वाह करने लगे और अपनी पर्चियां फाड़ी, वजाहत मिर्जा साहब को गले लगा।
शहंशाह की इन बेहिसाब बख्शिशों के बदले में ये कनीज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को अपना खून माफ करती है।
जब मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो गाना फिल्माया जा रहा था तो सबको संदेह था कि मधुबाला इतना उच्च कोटि का कथक कर भी पाएंगी या नहीं, क्योंकि वो एक ट्रेंड नृत्यांगना तो थी नहीं।
जब वो रिकॉर्ड कर रहे थे ये गाना मोहे पनघट पे तो आसिफ साहब और लच्छू महाराज दोनों उनके पास आए और उनसे कहा कि देखिए नौशाद साहब कुछ इस तरह का गाना कंपोज कीजिए कि नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में जो ठुमरी और दादरा होता था कुछ उससे मिलता जुलता कुछ होना चाहिए ताकि हम भी इंस्पायर हों, हमें भी कुछ अपना जौहर दिखाने का मौका मिले। तो सुन के नौशाद साहब ने लच्छू महाराज से कहा कि आप कथक करवाना चाहते हैं मधुबाला से, लेकिन कथक की रिक्वायरमेंट तो एक्सपर्टीज है और मधुबाला कैसे कर पाएंगी वो हाव भाव और फेशियल एक्सप्रेशन और वो कैसे कर पाएंगे। तो लच्छू महाराज ने कहा कि आप उसकी फिक्र ना करें, वो मैं करवा लूंगा और वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास करेंगे। उन्होंने रिकॉर्ड किया नौशाद साहब ने और बिल्कुल वैसे ही हुआ, मधुबाला ने जबरदस्त डांस किया उसमें।
बात यह है कि इस गाने की शूटिंग को कई बड़े लोगों ने देखा, चीन के प्रधानमंत्री चुएन लाई, मशहूर शायर फैज अहमद फैज और बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने जुल्फकार अली भुट्टो मुगले आजम की शूटिंग देखने आते थे।
इस गाने की शूटिंग जितने दिनों चली उतने दिनों वो रोज आए। बाद में उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ ये गाना सुनने आता हूँ, उनको इतना पसंद था वो गाना कि वो दिन भर रहते थे जब तक उसकी शूटिंग चलती थी और बीच बीच में ब्रेक्स में वो गाना बजा के सुनते भी थे, क्रू के साथ खाना खाते थे और बाकायदा इस गाने से बहुत उनको लगाव था।
इस फिल्म की जान थी कि आसिफ का अटेंशन टू डिटेल, जोधा भाई द्वारा पहने गए कीमती कपड़ों को हैदराबाद के सालार जंग म्यूजियम से उधार लिया गया था। सेट के खंबे, दीवारें और मेहराबें बनने में महीनों लग गए। खतीजा अकबर अपनी किताब द स्टोरी ऑफ मधुबाला में लिखती है,
शीश महल का सेट बनाने में पूरे 2 साल लगे। आसिफ को इसकी प्रेरणा जयपुर के आमेर किले में बने शीश महल से मिली थी। उस समय भारत में उपलब्ध रंगीन शीशे की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं थी, उन शीशों को बहुत ज्यादा कीमत चुकाकर बेल्जियम से आयात किया गया। इस बीच ईद आ गई, रस्म का पालन करते हुए मुगले आजम के फाइनेंसर शाहपुर जी मिस्त्री आसिफ के घर पर ईदी लेकर पहुंचे। वो एक चांदी की ट्रे पर कुछ सोने के सिक्के और 1,00,000 रुपए लेकर गए। आसिफ ने पैसे उठाए और मिस्त्री को वापस करते हुए कहा, इन पैसों का इस्तेमाल मेरे लिए बेल्जियम से शीशे मंगवाने के लिए करिए।
मुगले आजम फिल्म का सबसे मशहूर गाना था प्यार किया तो डरना क्या, इसको लिखने और संगीत में ढालने में नौशाद और शकील बदायूनी को पूरी रात लग गई।
जब लिखने की बारी आई, कंपोज करने की बारी आई तो उसको लिखना सबसे बड़ी चीज थी क्रैक करना, जो मुश्किल था। तो नौशाद साहब अपने घर पहुंचे, शकील साहब को अपने घर पे बुलाया, वो 6 बजे अपने कमरे में गए और दरवाजा बंद कर दिया और पूरी रात कोशिश जारी रही इस गाने को लिखने की। तमाम और शायरों के शेर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। कुछ करते 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 आधी रात गुजरने के बाद नौशाद साहब को याद आया कि बचपन में एक पूर्वी का कोई गाना सुना था, प्रेम किया का चोरी की, तो वो उन्होंने शकील साहब से जिक्र किया और शकील साहब को बहुत पसंद आया, तो उसके बेसिस पे शकील साहब ने फिर उसको इलैबोरेट करके पूरा गाना लिखा। वो गाना खत्म करके वो लोग सुबह कमरे से बाहर निकले तो सुबह का सूरज निकल रहा था।
एक दिन आसिफ ने नौशाद से कहा कि वो स्क्रीन पर तानसेन को गाते हुए दिखाना चाहते हैं। सवाल उठा कि इसे गाएगा कौन। नौशाद ने कहा कि इसे उस समय के तानसेन बड़े गुलाम अली खान से गवाना चाहिए, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं होंगे।
आसिफ साहब ने कहा कि वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप उनसे एक मीटिंग फिक्स करवाइए। तो ये दोनों लोग पहुंचे, उन्होंने तारुफ कराया, ये आसिफ साहब हैं और ये चाहते हैं कि आप इसमें एक तानसेन के लिए गाना गाएं। तो बड़े गुलाम अली खान साहब ने कहा कि भाई नौशाद साहब, कोई और म्यूजिक इवेंट वगैरह हो तो आप मुझे बुला लीजिए, फिल्मों के लिए मैं नहीं गाता क्योंकि वो बड़ी उस बंदिशों में गाना पड़ता है और मुझसे इस तरह से नहीं हो सकता। ये कही रहे थे कि एकदम से बीच में आसिफ साहब खामोश खड़े सुन रहे थे, फिर उन्होंने कहा था कि नहीं खान साहब, गाना तो आप गाएंगे। तो बड़े गुलाम अली खान साहब नौशाद साहब को बाहर ले गए कमरे के और कहा कि भाई आप ये किस सन के आदमी को ले आए हैं, मैं मना कर रहा हूँ, नहीं गाऊंगा, ये क्या मुझसे जबरदस्ती गवाएंगे और मैं इनसे इतनी बड़ी फीस मांगूंगा कि ये भाग खड़े होंगे। तो खैर ये लोग कमरे में वापस गए और उन्होंने आसिफ साहब से कहा कि अच्छा आप मुझे पैसे देंगे, 25,000 रुपए लूंगा, बताइए। आसिफ साहब ने फौरन चुटकी बजाई। अच्छा आसिफ साहब के बारे में एक वो मशहूर था कि वो सिगरेट पीते थे और ऐश झाड़ने के लिए चुटकी बजाते थे, तो उन्होंने चुटकी बजाई और कहा कि बस 25,000, आप तो नायाब हैं, आप तो जो मांगते वो दे देते। खान साहब ने नौशाद साहब की तरफ देखा, उन्हें हैरानी हुई क्योंकि उस वक्त में 300 से 1,000 रुपए तक का एक स्टैंडर्ड बड़े से बड़ा सिंगर पैसे लेता था, 25,000 कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और ना सिर्फ आसिफ साहब ने उस गाने के लिए 25,000 रुपए दिए बल्कि एक और गाना रिकॉर्ड कराया और उसके भी 25,000 रुपए दिए।
आजम बनने के अंतिम चरण में मधुबाला और दिलीप कुमार के बीच बातचीत बंद हो गई थी क्योंकि मधुबाला ने अपने परिवार के दबाव के चलते उनका शादी का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। फिल्म में दुर्जन सिंह का रोल करने वाले अजीत ने एक बार लिखा था,
एक सीन में दिलीप कुमार को मधुबाला को थप्पड़ मारना था। जब कैमरा रोल हुआ तो दिलीप कुमार ने मधुबाला को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वहां मौजूद सारे लोग स्तब्ध रह गए। शॉट तो ओके हो गया लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया कि अब आगे क्या होगा। क्या मधुबाला वॉकआउट कर जाएंगी, क्या शूटिंग रोकनी पड़ेगी। इससे पहले कि मधुबाला कुछ कहती, आसिफ उन्हें कोने में ले जाकर बोले, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि ये साफ हो गया है कि वो अभी भी तुम्हें प्यार करता है। एक आशिक के अलावा कोई अपनी माशूका से ऐसा कैसे कर सकता है।
आसिफ की मुश्किल ये होती थी कि मधुबाला के पिता अताउल्लाह खां अक्सर फिल्म की शूटिंग के दौरान मौजूद रहते थे, लेकिन उन्होंने उनसे पिन छुड़ाने का नायाब तरीका ढूंढ निकाला। मशहूर फिल्म इतिहासकार बनी रूबिन अपनी किताब हॉलीवुड फ्लैशबैक ए कलेक्शन ऑफ मूवी मेमोयर्स में लिखते हैं,
जिस दिन दिलीप कुमार और मधुबाला के बीच अंतरंग प्रेम दृश्य फिल्माए जाने थे, आसिफ ने मधुबाला के पिता अताउल्लाह खां को सेट से दूर रखने के लिए एक तरकीब निकाली। आसिफ को पता था कि अताउल्लाह खां रमी खेलने के शौकीन थे। उन्होंने अपने पब्लिसिस्ट तारकनाथ गांधी को कुछ 1,000 रुपए देकर कहा, आज से तुम्हारा काम अगले कुछ दिनों तक खां साहब के साथ रमी खेलना होगा और तुम जान बूझ कर हर बाजी हारोगे।
सालों तक शूटिंग चलने के कारण फिल्म ओवर बजट हो गई और फिल्म के फाइनेंसर शाहपुर जी मिस्त्री यहां तक सोचने लगे कि इस फिल्म को के आसिफ से लेकर सोहराब मोदी से निर्देशित करवाया जाए।
इस फिल्म को बनने में बहुत वक्त लगा, 10 साल का अरसा गुजरा। तो जाहिर है जो फाइनेंसिस थे दे वेंट आउट ऑफ कंट्रोल और बिल्कुल शाहपुर जी तो बहुत ज्यादा खफा थे थ्रू आउट द मेकिंग आसिफ साहब से, क्योंकि बजट बढ़ता जा रहा था और आसिफ साहब पानी की तरह पैसा बहाते थे बिकॉज ही वॉन्टेड क्वालिटी और उसके लिए वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। तो एक दिन तंग आके शाहपुर जी ने फैसला किया कि अब मैं डायरेक्टर ही चेंज कर दूंगा, ना ये डायरेक्टर रहेगा ना मेरा खर्चा होगा। तो उन्होंने सोहराब मोदी साहब से बात की और एक दिन उनको ले आए वो सेट पे दिखाने, शीश महल का सेट लग रहा था, तो आसिफ साहब मौजूद थे वहां पे, तो खामोशी से देखते रहे। थोड़ी देर के बाद उठ के गए, सौरभ मोदी और शाहपुर जी के पास पहुंचे और बोले कि आपको ये फिल्म और जिससे मुकम्मल करवानी है करवा लीजिएगा, लेकिन ये सेट मैंने लगाया है और ये सेट मैं ही मुकम्मल करूंगा, क्योंकि सारी इंडस्ट्री कह रही है कि सेट पे शूटिंग करना इम्पॉसिबल है, तो अब मामला मेरे वकार का है, इस सेट पे मैं ही शूटिंग करूंगा और इस सेट पे अगर किसी ने कदम रखा तो मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा।
मुगले आजम अपने जमाने की सबसे महंगी और सबसे सफल फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म का निर्देशक के आसिफ ता उम्र एक किराए के घर में रहा और टैक्सी पर चला।
शाहपुर जी से नौशाद साहब ने एक बार पूछा, जब शाहपुर जी बहुत तंग आ गए थे, कि अगर आपको इतनी शिकायत है आसिफ साहब से, तो आपने उनके साथ कोलैबोरेट क्यों किया, क्यों आपने उनके साथ मुगले आजम बनाने का फैसला किया और क्यों अब तक कंटिन्यू कर रहे हैं? तो शाहपुर जी ने ठंडी सांस ली और बोला कि नौशाद साहब एक बात बताऊं, ये आदमी ईमानदार है, मतलब इसने इस फिल्म में 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिया है लेकिन अपनी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं डाली है, पूरा का पूरा फिल्म इस्तेमाल करा दिया, बाकी सारे आर्टिस्ट वगैरह ने अपना कॉन्ट्रैक्ट कई दफा रिवाइज करवाया क्योंकि वक्त गुजरता जा रहा था, लेकिन इस आदमी ने बिल्कुल भी कोई धोखाधड़ी नहीं की, कोई पैसे का गबन नहीं किया, कोई और होता 10-20 लाख रुपए मार लेता, लेकिन इसने नहीं किया। ये आज भी चटाई पे सोता है, टैक्सी में 6 आना पर मील का किराया देके सफर करता है, सिगरेट भी जो पीता है वो दूसरों से मांग के पीता है। ये आदमी 20 घंटे तक लगातार खड़ा होकर काम करता रहता था।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
विवेचना का यह अंक आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। और अब बात भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए आखिरी वनडे मुकाबले की, सुनिए मैच का हाल।
आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच की श्रृंखला का आखिरी मुकाबला खेला गया। ये मुकाबला काफी डिसाइसिव था। मेलबर्न में हुए इस मुकाबले को भारत ने अपने नाम किया 7 विकेट से, और इस तरह से ये सीरीज भी अपने नाम की। भारत ने जीता था टॉस और निर्णय लिया था गेंदबाजी करने का पहले। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 230 रन का लक्ष्य रखा, भारत ने इस लक्ष्य को हासिल किया और 7 विकेट से ये मुकाबला अपने नाम किया। मैन ऑफ द मैच रहे युजवेंद्र चहल, जिन्होंने 6 विकेट लिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो ये श्रृंखला हुई है उसमें T20 सीरीज शामिल है, टेस्ट सीरीज शामिल है, वनडे इंटरनेशनल की सीरीज शामिल है। 3 सीरीज में से 2 सीरीज जीतकर भारत ने ये श्रृंखला, ये दौरा बहुत यादगार बना दिया है, ऐसा कहना है वरिष्ठ खेल पत्रकार आयाज मेमन का।
ऑस्ट्रेलिया का दौरा जो है इमोर्टल एवरग्रीन है, हमेशा याद आएगा। जैसे हमने टेस्ट सीरीज में भी देखा, ऑस्ट्रेलिया में अगर स्टार्ट अच्छा मिलता है तो टीम अच्छा परफॉर्म कर सकती है। T20 सीरीज ड्रॉ हुई थी, टेस्ट सीरीज आपने जीता, वो प्रायोरिटी था। मैं मानता हूँ कि टेस्ट सीरीज जीतना सबसे बड़ी बात थी, सबसे बड़ा चैलेंज था और वो हुआ है। लेकिन अगर आप 3 सीरीज में से 2 जीतते हैं तो आप कह सकते हैं कि बहुत ही सफल दौरा रहा है ऑस्ट्रेलिया का,
तो कहा जा सकता है मिशन अकॉम्प्लिश्ड। अब जल्द एक सीरीज होगी भारत और न्यूजीलैंड के बीच, उसके बाद इंग्लैंड में वर्ल्ड कप। पिछली बार वर्ल्ड कप जीता था ऑस्ट्रेलिया ने, अब इस साल जब ऑस्ट्रेलिया जैसे चैंपियन को हरा दिया है इंडिया ने, तो जाहिर है कि ये एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा जब वर्ल्ड कप शुरू होगा। इसी एक्सपीरियंस और एडवांटेज के बारे में बात कर रहे हैं पूर्व क्रिकेटर मदन लाल।
भारतीय टीम ने एक हिस्ट्री रची है वर्ल्ड कप का, जो अगर आप बात करें तो देखो फर्क तो पड़ता ही है। जब आप किसी बड़ी बड़ी टीमों को हराते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ हम इस टीम को हरा सकते हैं। वो जो विश्वास है बड़ा जरूरी रहता है टीम के अंदर, क्योंकि आपको मालूम होता है हमें क्या कॉम्बिनेशन खिलाना है इनके खिलाफ, तो ये सब चीजें एडवांटेज ही देती है क्योंकि आप पहले खेल चुके हैं उनके।
तो अब से कुछ ही दिनों में भारत और न्यूजीलैंड के बीच शुरू होगी क्रिकेट सीरीज। इस सीरीज का पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा 23 जनवरी को नेपियर न्यूजीलैंड में।
और इस न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में भारत को 5 वनडे और 3 T20 मुकाबले खेलने हैं। और अब चलते चलते मुख्य समाचार सिंधु वासनी से।
बीबीसी समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के बीच होने वाली दूसरी संभावित बैठक के विषय में चर्चा के लिए एक शीर्ष उत्तर कोरियाई वार्ताकार वॉशिंगटन पहुंचे हैं। अफ्रीकन यूनियन का कहना है कि उसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनावों के नतीजों पर गहरा शक है। कॉन्गो में शुक्रवार को अंतिम नतीजे जारी किए जाने हैं। म्यांमार सेना का कहना है कि वो देश के पश्चिमी प्रांत अराकान में सक्रिय बौद्ध विद्रोही गुट अराकान आर्मी को हरा देगी। बीते महीने में विद्रोहियों और सरकारी सुरक्षा बलों के बीच जारी झड़पों की वजह से कम 5,000 लोगों को पलायन करना पड़ा है। अमेरिका की इलेक्ट्रिक कारें बनाने वाली कंपनी टेस्ला अपने कर्मचारियों की संख्या में 7% की कटौती करने जा रही है। टेस्ला का कहना है कि उसके वाहन आम लोगों के लिए काफी महंगे हैं और उन्हें सस्ता करने के लिए ये कदम उठाना ही होगा। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो की कमान थी राजेश चौहान और रवि के हाथ। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।